الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر ہم حضرت عبدالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ دروس امور خانداری میں حسن انتظام میں سے پڑھتے ہیں، اور رشتہ داریاں نبھانا والا موضوع چل رہا ہے. اس کے اندر حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ عام طور پر عورتوں کی زندگی کا سب سے ویک پوائنٹ جو ہے وہ اپنے ان محرم رشتہ داروں سے تعلقات کا خراب ہو جانا ہے، کہ وہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے نہیں رکھ پاتی ہیں، ویک ہو جاتے ہیں. کن کے ساتھ؟ خاوند کے ساتھ، ساس کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ. ٹھیک ہے، اہم ترین رشتے ہیں، خاوند کا رشتہ، پھر ساس کا رشتہ، اور پھر اپنی ہی اولاد کا رشتہ، اور ان کے ساتھ بھی یہ رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں. اس کی وجوہات کیا بنتی ہیں اور ان کو ٹھیک رکھنے، اور یا اگر خراب ہو چکے ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، وہ کافی بہت تفصیل کے ساتھ حضرت نے اپنے اس بیان کے اندر فرمائے تھے، اور جن کے اوپر ہم نے کچھ مزید تشریح کرنے کی کوشش کری تھی. خاوند کے ساتھ تعلق سب سے پہلا، سب سے اہم، ظاہر ہے انسانوں کے ساتھ تعلقات کی بات ہو رہی ہے، ورنہ سب سے پہلا اور سب سے اہم تعلق جو ہوتا ہے کسی بھی انسان کا وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر انسانوں ہی کی بات ہو رہی ہے. تو اب خاوند کے ساتھ تعلق میں کمیونیکیشن کو بہتر بنائیں، یعنی صحیح سے بات کرنا یہ سیکھیں کہ کیسے بات صحیح سے کی جاتی ہے. پک یور بیٹل، اصولی بات کو چنیں، یعنی ہر چیز کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ جو بہت اہم اصولی بات ہے تو اس کے اوپر بھی ہنگامہ نہیں کھڑا کر دینا چاہیے، لیکن اس کے اوپر جو ہے نا پھر دلیل کے ساتھ، اصول کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے دین کے اوپر عمل ہے، تو اب دین کے اوپر عمل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ بات کرنی چاہیے، لیکن سیکھ کر کے آف کورس بات کرنی چاہیے. ایسے نہیں کہ بس جو ہے وہ دین کا شوق لگ گیا ہے لیکن دین کے بارے میں نہ کچھ پتا ہے نہ بات کرنی آتی ہے، اور بس ایسی جو ہے وہ شروع کر دیا ڈسکشن، تو اس کے اندر پھر مسئلے ہی آپ مزید کریٹ کریں گی. تو پک یور بیٹل، ٹھیک ہے، تو اہم باتوں کے اوپر خالی دلیل کے ساتھ یعنی علم کے ساتھ بات کریں. پھر اس کے بعد مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، جس میں پھر ہم نے ایمپتھی والا ٹاپک بیان کیا تھا کہ جو مسئلہ ہے نا تو وہ دوسرے بندے کے بھی نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتی تو میں اس مسئلے کو کیسے دیکھ رہی ہوتی، ٹھیک ہے، وغیرہ. اچھا، اس کے بعد پھر خاوند کی رائے کا احترام کریں، یہ بہت اہم پوائنٹ تھا، حالانکہ صرف ایک ہی جملہ حضرت نے یہاں پہ فرمایا تھا لیکن ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کری تھی مثالیں دے کر کے بھی. پھر بات مناسب وقت پر کریں، وقت دیکھ کر کے ہر وقت ہر بات کرنا مناسب نہیں ہوتا. اپنی غلطی کو تسلیم کریں، جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو یہ بھی کرنا پڑتا ہے. ریلیشن شپ مینجمنٹ میں اپنی غلطی کو تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ مینجمنٹ کے اندر بھی اپنی غلطی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو توبہ کہتے ہیں. توبہ، الندم و توبہ نا، ٹھیک ہے، یہی فرمایا نا، الندم و توبہ. تو ندامت کیا چیز ہوتی ہے؟ غلطی کو تسلیم کرنا اور اس کے اوپر نادم اور شرمندہ ہونا. تو اگر ہم غلطی تسلیم نہیں کر رہے بلکہ جو ہے وہ پہلے سے ہی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ریلیشن شپ نہیں بن سکتی. ठीक है, जब अल्लाह सबसे रहीम करीम परवरदिगार के साथ रिलेशनशिप नहीं बन सकती, तो शौहर नामदार के साथ कैसे रिलेशनशिप बन सकेगी जब तक के अपनी गलती को तस्लीम ना करें। ठीक है, आपके साथ भी किसी दूसरे की रिलेशनशिप नहीं बन सकती जब तक वो दूसरा शख्स जो है ना, जिसने कोई गलत काम किया है, वो अपनी गलती तस्लीम ना करे। उस वक्त तक उसकी आपके साथ रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं बन सकती। बस अल्लाह अकल अता फरमाए कि यही बात जो है वो हम दूसरों पर भी अप्लाई कर लें, तो बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि जिस तरह दूसरा मुझे राजी नहीं कर सकता जब तक के अपनी गलती को तस्लीम ना करे, उसी तरह मैं दूसरे को राजी नहीं कर सकती जब तक के मैं अपनी गलती तस्लीम ना करूं। ठीक है तो बहुत ही आसान सी और सादा सी बात, लेकिन यही नहीं समझ में आती। खाविंद की बात दूसरों से ना करें, काबिले कबूल बने। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट था, काबिले कबूल बने, यानी रियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस जो है ना, और तवक्कुआत और ये सब मत बनाए। ठीक है, अच्छा मफरूजों से बचें, ये भी एक बहुत अहम मसला खड़ा हो जाता है कि इल्म हासिल नहीं किया, किसी चीज का इल्म है नहीं, बस अजम्पशंस के ऊपर बैठे हुए। ठीक है, जैसे वो मेरे ऊपर खर्च नहीं करता बल्कि मुझसे ज्यादा जो है वो अपनी बहन पे खर्च करता है और अपनी माँ पे खर्च करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, इसका मतलब ये है कि उनको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। तो ये एक मफरूजा है। ठीक है, तो इसके पीछे कोई ठोस बुनियाद नहीं है, बस आप एक आप गुमान करके बैठ गई हैं। ठीक है, अब इस मफरूजे की वजह से जाहिर है कि दिल खराब होंगे, शैतान को मौका मिलेगा कि और जो है वो ताल्लुकात को खराब करें। तो मफरूजों से बचें, फिर हालात के साथ अपने आप को भी बदलें। ठीक है, तो हालात बदल गए लेकिन हम ना बदले, तो फिर ये तो यानी नाकामी होती है, इसके अंदर इंसान का नुकसान होता है, ऐसा इंसान जो होता है वो टूट जाता है। तो फ्लेक्सिबल रहना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दीन के मामले में भी फ्लेक्सिबल हो गए और जो है वो दीन के अहकाम पे अमल करना छोड़ दिया, क्योंकि अब जो है वो मुश्किल हालात बन गए थे, मैंने दीन पर ही अमल करना छोड़ दिया, क्योंकि क्लास में सुना था कि हालात के साथ अपने आप को भी बदल लें। नहीं, यहाँ पे दीन की बात नहीं हो रही थी, बल्कि यहाँ पे दूसरे किस्म के हालात और दूसरे किस्म के बदलने की बात हो रही थी। मुआफ करना सीखें, ये भी एक मुश्किल काम होता है, लेकिन इसको भी सीखना इंसान को अच्छा इंसान बनने के लिए पड़ता है। खाविंद के बेहतरीन दोस्त बने, ये आखिरी टॉपिक था जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ के मुकम्मल किया कि महातुल मोमिनीन जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की बेहतरीन दोस्त बनी थी, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ट्रस्ट करते थे और उनसे मशवरे भी किया करते थे। एक मिसाल शायद रह गई थी पिछली क्लास में कि जब सुलह हुदैबिया का मौका आया था, तो आपको यकीनन पता ही होगा कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एक और बहुत मुश्किल वक्त आया था। ठीक है, जब वही नाजिल हुई थी वो तो शायद सबसे मुश्किल वक्त था। ठीक है, लेकिन उस वक्त खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु के पास तशरीफ ले गए, आपने अच्छे अच्छे कलमात कहे और वरका बिन नौफिल के पास लेके गई और बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, लेकिन एक और भी मुश्किल वक्त आया था सुलह हुदैबिया के वक्त, कि जबकि सहाबा कराम के ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हुई भी थी कि हम क्यों जो है वो झुक के सुलह कर रहे हैं, हालांकि हम ही हक पर हैं, हमारे साथ अल्लाह के नबी हैं और वो लोग बिल्कुल ही गलत बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो है ना वो सुलों की शर्तें तस्लीम कर रहे हैं, यानी नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म था कि भाई तस्लीम करो इन शर्तों को। तो सहाबा को बिल्कुल ना जैसे सुन हो गए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा को एक हुक्म दिया कि अपने बाल कटवा लो, क्योंकि अहराम से निकलना क्या था, और अपनी कुर्बानियों को जो है वो कुर्बान कर दो या बाल कटवा लो, इस तरीके से जब हुक्म दिया गया तो सहाबा नहीं उठे ना अपनी जगह से। ठीक है, सहाबा ने, अच्छा ये आम लोग नहीं थे कि कभी सुनते कभी ना सुनते, ये हमेशा सुनने वाले लोग थे, ये तो जान देने वाले लोग थे। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम का इनके ऊपर इतना एतमाद था और ये नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर इतना एतमाद करते थे कि अब जो ये नहीं बात सुन रहे थे या बात सुन करके उठ नहीं रहे थे अपनी जगहों से, तो आप सरसरम के ऊपर इंतहाई मुश्किल कैफियत, ये क्या सिचुएशन हो गई ना। तो उस वक्त भी जो देखें कि नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने घर के अंदर तशरीफ ले,
ठीक है, उस वक्त जो है वो यानी अबू बकर सिद्दीक रतान का ये मामला नहीं था कि वो बात नहीं सुन रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक रतान के पास भी जा सकते थे, वहां तशरीफ नहीं लेके गए, बल्कि कहाँ गए, अपने घर में गए जहां पे बीवी मौजूद थी हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बात सुनी, समझी और मशवरा दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने उस मशवरे पर अमल भी किया और मसला सारा का सारा बैठ गया, सारा का सारा जो है ना वो रफू हो गया, खत्म हो गया वो मसला। ठीक है, तो कितनी बेहतरीन जो है ना वो जिंदगी हम सीखते हैं अपने नबी अलैहिस्सलाम से कि ऐसी जब ताल्लुकात होंगे मियाँ बीवी के दरमियान तो क्या ये घर जो है वो जन्नत का नमूना ही बन जाएगा, राइट। और अगर हम इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे और घर में वो चीजें करेंगे जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने करी और जैसे सहाबियात ने करी, तो हमारा घर भी ऐसा ही बन सकता है ना। ठीक है, तो यानी घर बैठे जन्नत मिल जाना, दुनिया में बैठे बैठे जो है वो जन्नत के मजे उठा लेना। तो काश कि हम इसकी तरफ तवज्जो दें और इस बात को संजीदगी से लें कि भाई सीखना चाहिए इन सब चीजों को ना, बगैर सीखे तो कोई भी चीज इंसान नहीं कर सकता। तो खाविंद के साथ ताल्लुक जो है वो इसकी एक समरी भी अभी आपके सामने हो गई, और इसके बाद फिर अगला जो पॉइंट था वो है ससुराल वालों से ताल्लुक। ठीक है, ससुराल वाले कौन होते हैं कि जिनके साथ एक लीगल रिलेशनशिप, एक कानूनी ताल्लुक बनाया जाता है। जब निकाह होता है तो निकाह बाकायदा एक एग्रीमेंट होता है, बिअतु व इश्तरैतु, जैसे कोई आप सेल एग्रीमेंट करते हैं ना, तो उसमें एक शख्स जो है वो बेचता है, दूसरा शख्स जो है वो खरीदता है कुछ कीमत दे करके। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो निकाह के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट होता है गवाहों की मौजूदगी में। ठीक है, उसी में कबिलतु का जो है वो लफ्ज कहा जाता है। ठीक, कुछ जगहों पे शायद कबिलतु कहा जाता होगा लेकिन बाकी जगहों पे कबिलतु कहा जाता है। तो मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, ठीक है, और इस मेहर के बदले में कबूल किया। ठीक है, तो ये एक लीगल ताल्लुक बनता है। लेकिन इस लीगल ताल्लुक की पहुंच कहां तक जाती है कि जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि खाविंद बीवी का रिलेशनशिप जो है वो हमेशा हमेशा का रिलेशनशिप होता है, अनलेस कि हम अपनी बेवकूफी की वजह से या अल्लाह की कोई और है हिकमत की वजह से ये टूट ना जाए, वरना इसके अंदर कोई एंड पॉइंट नहीं होता कि बस ये 10 साल के लिए है, ये 20 साल के लिए है, या 2 साल के लिए है, बिल्कुल भी नहीं, ये हमेशा हमेशा का ताल्लुक होता है। ठीक है, तो ससुराल वालों के साथ भी फिर इसी तरह से ये जब निकाह होता है तो फिर ससुराल वालों के साथ भी ताल्लुक बनता है इसके जमन में। तो उसके मुताले फरमाते हैं कि अगली बात यह है कि ससुराल वालों के साथ अपना ताल्लुक कैसे अच्छा बनाया जाए। तो ससुराल वालों में सबसे पहले सुसर और सास के साथ ताल्लुक है। ठीक है, अब देखें हम कैसे अपने मशायख को शुक्रिया अदा करें ना। ठीक है, कि उन्होंने हमारी जिंदगी के कैसे कैसे पहलुओं के ऊपर हमें समझाया और कितनी अच्छी तफसील के साथ समझाया। अब ये जो हम ससुराल वालों से ताल्लुक पढ़ रहे हैं तो यही जो बयान है इसी को तो दूसरे मौके के ऊपर मिसाली बहू के मौजू के अंदर हम पढ़ चुके हैं। वो भी हजरत का एक बयान था ना, मिसाली बहू, जो मिसाली औरत के सिलसिला बयानात के तहत था, राइट। पीछे जो खाविंद के साथ ताल्लुक था तो उसी को जो है वो हम मिसाली बीवी के मौजू के तहत कितनी और तफसील के साथ पढ़ चुके हैं जो कि हजरत ने बयान फरमाई। ठीक है, तो अब ये देखें, ये जो है ना ये बयानात के अंदर इस इल्म को हासिल करना ये पहले नहीं होता था। ठीक है, ये पहले नहीं होता था कि हर दौर हर जमाने के अंदर जो बीवी साहिबा हैं वो किसी शेख साहब के बयान में जाकर के अच्छी बीवी बनना सीख रही हैं, और बहू साहिबा जो है वो भी किसी मौलवी साहब के बयान में जाकर के अच्छी बहू बनना सीख रही है, सास ससुर के साथ अच्छा ताल्लुक करना सीख रही है। ये पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था कि ये चीज जो है ना वो औरतों में नस्लन बस नस्लन मुंतकिल होती थी। नबी अलैहिस्सलाम और अजवाज मुतहरात से सीखा, उससे पहले भी बल्कि ये अच्छे अखलाक व अतवार जो हैं वो शरीफ घरानों की औरतें अपने घरों के अंदर अपनी बड़ी औरतों से सीख रही होती। ठीक है, ये सिलसिला शुरू से चला आ रहा है। हत्ता कि इवन कफार के घरों के अंदर भी बहुत सारी जो शुरफा के आदात थी वो इवन काफिरों के घर के अंदर भी मौजूद। और नबी अलैहिस्सलाम ने आके उन गलतियों की इसलाह कर दी, जो गलतियां हो गई थी दरमियान में, कुछ लोगों ने खराबियां डाल दी थी, उन खराबियों की इसलाह नबी अलैहिस्सलाम ने कर दी। इसी वजह से हमने अपने बच्चों की क्लास के अंदर इस तरह से बात को समझाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस हिदायत के तरीके को जो कि आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से चला आ रहा था, ठीक है, लेकिन दरमियान में शयातीन ने उस तरीके को खराब कर दिया था, ठीक है, गलत बातें उसके अंदर ऐड कर दी थी, कुछ अच्छी बातें उसके अंदर से निकाल दी थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में आके क्या किरदार अदा किया, क्या कारनामा अदा किया, अल्लाह के हुक्म से उस हिदायतनामे को रीसेट कर दिया। रीसेट, रीसेट करने का मतलब क्या होता है कि जिसके गोया के एक रीस्टार्ट कर दिया ना, आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे मसले क्रिएट हो जाए, हैंग हो जाए आपका फोन, या आपका कंप्यूटर हैंग हो जाए, या उसमें वायरस आ जाए, या उसके अंदर कोई और इस किस्म की चीजें ना चलनी, तो आप उसको रीस्टार्ट कर देते हैं। तो रीस्टार्ट करने से अक्सर सारे मसले हल हो जाते हैं, तो उसको रीसेट करना भी कह देते हैं, ठीक है। तो दीन को नबी अलैहिस्सलाम ने रीसेट कर दिया। दीन क्या है? अल्लाह का बताया हुआ तरीका जिंदगी गुजारने के लिए, यही तो दीन है। और जिंदगी गुजारने का मतलब खाली बाहर की जिंदगी नहीं, घर के अंदर की जिंदगी भी गुजारना। तो दीन तो हमें घर और बाहर पूरी मुकम्मल जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रीसेट कर दिया। अब उसके बाद जो है ना, वो सहाबियात ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा उसको फिर अपने बेटियों को, बहुओं को सिखाया घरों के अंदर रहते हुए, और उन्होंने आगे सिखाया, उन्होंने आगे सिखाया, उन्होंने आगे सिखाया, ठीक है। यही सिलसिला अब तक चलता आ रहा था। फिर आप ये बताएं, अब ये सवाल आपसे किया जा रहा है, ठीक है, कि फिर ये मशायख के बयानात कहां से शुरू हो गए, क्यों शुरू हो गए, ठीक है। ये सवाल है कि जब ये 1300 साल तक घर के अंदर औरतें अपनी औलादों को ये चीजें सिखा रही थी, तो अब क्या हो गया कि जिसकी वजह से ये सिलसिला मुनकतः हो गया और मशायख को मैदान में कूदना पड़ा कि अब मशायख आकर के जो है वो मिसाली बीवी सिखा रहे हैं, मिसाली बहू सिखा रहे हैं, मिसाली सास सिखा रहे हैं, और लेक्चर्स के जरिए से सिखा रहे हैं, और किताबों के जरिए से सिखा रहे हैं, और जूम की क्लासेस के जरिए से सिखा रहे हैं। क्यों भाई? चलो जूम पहले नहीं होता था, लेकिन मशायख पहले भी तो लोगों को इकट्ठा करके जो है वो लेक्चर दे सकते थे ना, 1300 साल में ये भी तो ये काम हो सकता था, लेकिन पहले ये काम नहीं होता था। क्यों नहीं होता था और अब क्यों होता है, इसकी वजह आप बता दें। क्या हो गया दरमियान में कि ये सिलसिला घर के अंदर मुनकतः हो गया, अब जो है वो मशायख की किताबों और बयानात में शुरू हो गया? क्यों? हमने अमल करना छोड़ दिया है, अब मशायख को उन पर लेक्चर देने पड़े। भाई माँ ने अपनी बेटी को सिखाना क्यों छोड़ दिया? यहाँ पे अमल की बात नहीं हो रही, यहाँ सिखाने की बात हो रही है, ठीक है, हम सिखाने की बात हो रही है। माँ बेटी को सिखाती थी ना, या दादी जो है वो पोती को सिखाती थी, नानी जो है वो नवासी को सिखाती थी, बड़ी बहन छोटी बहन को सिखाती थी, तो अब ये मशायख क्यों सिखाना शुरू हो गया इस वाली बात को, ये हम पूछ रहे हैं। तो अमल की बात नहीं कर रहे, खैर, और आफ्टर द स्कूलिंग, और भाई बहुत सारे जवाब आ गए, ठहर थोड़ा सा पढ़ने भी पड़ते हैं ना। तो इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है कि आफ्टर द स्कूलिंग सिस्टम लेड टू गर्ल्स नॉट गेटिंग टू लर्न फ्रॉम देयर मदर्स ड्यू टू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ बीइंग अवे एंड ब्रेन वॉशिंग। ठीक है, कुछ कुछ आपका जवाब जो है वो जा रहा है उस तरफ, लेकिन क्लियर नहीं है इतना। तालीमी निजाम के जरिए औरत कैरियर की तरफ तवज्जो दे रही है, माओ ने तरबियत की जिम्मेदारी को पसे पुश डाल दिया, माँ घर से निकल गई, ठीक है, हमारी तरजीहात बदल गई क्योंकि अब स्कूल की पढ़ाई पे ज्यादा जोर है, औरत की सोच और फिक्र तब्दील हो गई, ठीक है, औरतें अपने कैरियर पर फोकस हैं दीन को छोड़कर, और घरदारी को और औलाद की तरबियत को छोड़ करके तालीम का जेवर है, लॉर्ड मुकाले की तालीम का जेवर, लॉर्ड मुकाले का जो है ना वो, कि हमारे एक भतीजे साहब ने हमें मिनट्स निकाल के कहीं से भेजे कि उसने जो लिखे थे ना अपने, तो हमने कहा भाई इतना टाइम तो नहीं है इसकी 19th सेंचुरी की अंग्रेजी पढ़ने का, चलो हम आखिरी पैराग्राफ पढ़ लेते हैं इसका, ठीक है। तो लॉर्ड मूकाले यानी मैकॉले, जिसने के तालीमी निजाम बनाया था ना, जिसको अंदर
हम तालीम का जेवर हासिल करते हैं अपने बच्चे बच्चियों को भेज भेज करके। तो उसने जो है ना अपने उस मजमून के आखिरी पैराग्राफ के अंदर ये लिखा था, बहुत सारी चीजें लिखी थी लेकिन एक चीज जो है ना वो ये थी कि ये जो हम ब्रिटिश लोग जो है ना, जब हमने कब्जा कर लिया इंडिया के ऊपर, तो अब हम जो है वो बरेसगीर के अंदर जो पुराना तालीमी निजाम है उसको क्यों जारी रखे, उसको क्यों जारी रखें। इसलिए कि बरतानिया ने आते के साथ ही सारा तालीमी निजाम चेंज नहीं कर दिया था, ठीक है ना, एकदम से जो है ना वो ये नहीं कर दिया था कि सारे जो है वो स्कूलों कॉलेजों को बंद कर दिया था। जो मुसलमानों के थे वो चल रहे थे, जो हिंदुओं के थे वो भी चल रहे थे। तो उसने ये कहा कि अगर तो हम इसी पुराने तालीमी निजाम को जारी रखना चाहते हैं ना, तो मैं इस इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं अभी इस्तीफा देता हूं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, ये उसने कहा था। और बहुत सही बात कही थी ना, बंदा जिस बात पे यकीन रखता हो तो उसके मुताबिक उसके ऊपर डटे ना, तो वो डट गया, उसने कहा नहीं मैं तो इसका हिस्सा बनूंगा ही नहीं। और उसके बाद उसने ये कहा कि ये जो तालीम है ना, ठीक है, यानी किसकी बात कर रहा था, कुरान हदीस नबी अलैहिस्सलाम की बातें अल्लाह की बातें, तो वो जो तालीमी निजाम की किताबें हैं ना, तो उन किताबों के ऊपर जो अल्फाज लिखे हुए हैं उन अल्फाज की हैसियत उस कागज से भी ज्यादा नहीं है जिस कागज के ऊपर वो अल्फाज लिखे हुए हैं। ये लॉर्ड मैकॉले ने लिखा था, ठीक है, पहली बात उसने ये लिखी आखिरी पैराग्राफ के अंदर कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता इस बेवकूफी का, ये जो इंतहाई फरसूदा किस्म का तालीमी निजाम है जो कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान राइज है बरेसगीर के अंदर, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। और दूसरी बात यह लिखी कि इसकी हैसियत तो इतनी भी नहीं है कि जितनी इस कागज की हैसियत है जिस कागज के ऊपर ये लिखा जाता है, यानी वो हमारे और आपके कुरान को कह रहा है कि कुरान के हरूफ की और कुरान के अल्फाज की इतनी भी हैसियत नहीं है, नाउज़ु बिल्ला सुम्मा नाउज़ु बिल्ला, जितनी कि उस कागज की अहमियत है जिस कागज के ऊपर वो लिखे जाते हैं। और हम कितने मोहब्बत और शौक और उल्फत और तमन्ना के साथ जो है वो अपनी औलादों को इस तालीमी निजाम के अंदर पढ़ा रहे होते हैं जो कि उस शख्स का बनाया हुआ निजाम, ठीक है। तो जब उस शख्स के बनाए हुए निजाम के अंदर फिर हमारी नस्लों ने पढ़ना शुरू किया, तो फिर औरत जो है एक तो उसकी सोच और फिक्र भी तब्दील हो गई, उसकी तरजीहात तब्दील हो गई। अब जब वो घर से बाहर निकल करके स्कूल कॉलेज जाएगी या जो है वो जॉब करेगी, तो फिर उसके पास कहाँ से वक्त होगा कि वो अपनी औलाद को वो चीजें सिखाएं जो कि उसने अपनी अम्मा से सीखी थी, ठीक है, अम्मा ने सिखा दी, लेकिन जब बेटी साहिबा जो है वो अब उनके पास वक्त ही नहीं है, वो लगी हुई है अपना इंजीनियर बनने में और डॉक्टर बनने में और फलाना बनने में फलाना बनने में, ठीक है, तो अब उनके पास कहां से 24 घंटे के अंदर वक्त आएगा कि वो अपनी औलाद में वो इल्म मुंतकिल करें जो कि ऊपर से उसने सीखा या ऊपर वाले उन्होंने उसको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करे। तो यहां पर ये सिलसिला मुनकतय हो गया, ठीक है, जो घर की औरतों से औरतों में चल रहा था यहां ये सिलसिला मुनकतय हो गया। अब जब नहीं है ये सिलसिला तो अब मशायख को मैदान में कूदना पड़ा। हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले शेख जिन्होंने इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया, ठीक है, तो अब ये सिलसिला तालीम जो है वो शुरू करना पड़ गया। अब हम उसकी तरफ भी तवज्जो ना दें बल्कि अपनी बेटियों को भेजते रहे उठा करके, हाँ 60 साल की औरत हो जाती है या 40 साल की औरत है, अब उसके पास करने को ज्यादा जो है वो काम नहीं, घर में बैठी हुई है, तो अब जो है वो बैठ के मशाइख की किताब की किताबें पढ़ रही है, मशाइख के बयान सुन रही है, बड़ा एहसान कर दिया आपने। जो असल वक्त था उस वक्त में तो जो है वो कॉलेज स्कूल के चक्कर काट काट करके और जो है वो जॉब के चक्कर काट काट करके वो टाइम तो निकल गया, ठीक है। तो ये इस वजह से ये वाला सिलसिला चल रहा है, वरना ये सही सिलसिला नहीं है, ये असल सिलसिला नहीं है। असल सिलसिला तो ये है कि ये औरतों को जो है वो सीख लेना चाहिए और अब आगे औरतों को ये वाला काम करना है, ठीक है। तो ससुराल वालों से ताल्लुक में सबसे पहली बात लिखी कि एक्सेप्ट देम एज बॉर्न पेरेंट्स, ठीक है, यानी अपने हकीकी बॉर्न पेरेंट्स का मतलब ये नहीं है कि वो जो पेरेंट्स आपके पास पैदा हुए हैं, बल्कि जैसे कि आपके पैदाइशी माँ बाप को उन्होंने उर्दू में अंग्रेजी में तर्जमा कर दिया, तो अपने हकीकी माँ बाप की तरह से समझें, ठीक है। जब भी हमारे मशाइख और हमारे हजरत भी यही फरमाया करते थे कि कि शादी से पहले औरत के और मर्द के भी, यानी सिर्फ औरत के बल्कि मर्द के भी दो माँ बाप होते थे, बस एक माँ एक बाप, लेकिन शादी के बाद चार होते हैं, सास ससुर भी जो है वो ऐड हो जाते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से सोचे ना, हमारे मशाइख जो है वो जहन साजी करते हैं इस तरह की बातें करके। शरीयत ने ससुर और सास को माँ और बाप का दर्जा दिया है, लिहाजा जब शादी हो तो आप भी अपने सास और ससुर को माँ बाप की तरह डील करें, ठीक है। अब जाहिर है फौरन से ख्याल तो ये आ रहा होगा मेरा शौहर क्यों नहीं करता, लेकिन ये क्लास जो है ना, ये आपके लिए है, ये आपके शौहर की क्लास नहीं है, तो आपको डील करना है शौहर से जो है वो बाद में डिमांड्स कीजिएगा। पहले अपनी बात करें कि आप करती हैं कि नहीं करती हैं। तो इस तरीके से देख लेने से बहुत सारे मसले, अगरचे के सारे मसले इस तरह हल नहीं हो जाते, लेकिन बहुत से मसले जो है वो इस सोच की तब्दीली से हल भी हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि माँ बाप के साथ उमूमी तौर पर अच्छा ही रिश्ता होता है, और उनके साथ जो है वो ज्यादा एक इंसान फॉरगिविंग होता है उनकी गलतियों के लिए, और उनके साथ एक शफकत मोहब्बत का ताल्लुक होता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। फिर उसके बाद दूसरा कि नेवर कंपेयर देम विद योर ओन पेरेंट्स, कि उनका अपने वालिदैन के साथ कभी मवाजना ना करें, कंपैरिजन ना करें, ठीक है। तो हजरत तो फरमा रहे हैं ना कि बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी लड़कियां ये गलती करती हैं कि खाविंद के सामने कंपेयर यानी मवाजना करने लगती हैं कि आपकी मामा ऐसी हैं, मेरी मामा ऐसी हैं, ठीक है, और आपके पापा ऐसे हैं और मेरे पापा ऐसे हैं, ठीक है। उमूमी तौर पर ये मामा पापा वाली बच्चियां इसको जिम्मेदार कैसे करती हैं, क्योंकि मामा पापा वाला जो माहौल होता है वो लॉर्ड मैकॉले के तालीमी निजाम और माहौल से जो पढ़ के निकलती हैं, तो फिर मामा पापा ही कह रही होती हैं, ठीक है। अम्मी अब्बू तो फिर जरा सा बैकवर्ड किस्म के लोग कह रहे होते हैं, तो वहां पे इस किस्म की हरकतें भी कमी हो रही होती हैं। लेकिन बहरहाल तो आपकी मामा ऐसी, मेरी मामा वैसी, और आपके पापा ऐसे और मेरे पापा ऐसे, ये बहुत नुकसानदेह चीज होती है, ठीक है। तो ये किसी को अच्छी नहीं लग सकती, इवन उस खाविंद को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि जो कि खुद अपने माँ बाप को जो है ना वो कोई बहुत अच्छा नहीं समझता, उसको खुद जो है वो अपने माँ बाप की गलतियां भी नजर आती हैं और वो उनकी हर बात से एग्री नहीं करता। लेकिन जब आप उसके सामने ये कंपैरिजन शुरू कर देंगी, अब उसको आपकी बात बुरी लगेगी, अब उसको आपकी बात बुरी लगेगी, ठीक है। क्योंकि अब आप क्या कर रही हैं, अब आप जो है ना उसकी जात पे अटैक कर रही हैं, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मामा, तुम्हारी अम्मी, ठीक है। तो हम तो अपने जोम के अंदर तो हम तो अम्मी पे अटैक कर रहे हैं, अब्बू पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाले को जो है ना वो सबसे पहले जो लफ्ज कान में पड़ रहा है वो है तुम्हारा अब्बा, तुम्हारा बाप। तो असल में ये अटैक जो है ये उसके वास्ते से आप कर रही हैं, डायरेक्टली अटैक नहीं कर रही, जो कि वो भी नहीं करना चाहिए ऑफकोर्स, लेकिन यहां तो बेवकूफी की इंतहा हो गई कि यहां तो आप उसको गोया के मैदान बना करके अटैक कर रही है ना, कि तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तो पहला अटैक तो उसके ऊपर जा रहा है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपको तो दिमाग वैसे ही जो है वो गुस्से में भिन हुआ हुआ है, आपको तो ये बात समझ में नहीं आ रही, उसको तो आ रही है ना, उसको तो ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। और पहली बात तो यही है कि भाई अगर उसके अब्बा और उसकी अम्मा गलत काम कर भी रही हैं और वो गलत अगर होते भी हैं और बुरी हरकतें कर भी रहे होते हैं, तो इसमें आपका खाविंद क्या कसूर? कोई खाविंद ने तरबियत करनी थी कि अपने माँ बाप की, जो कि उसने अच्छी तरबियत नहीं करी अपने माँ बाप की, इस वजह से उसका कसूर है? खाविंद ने तो नहीं पैदा किया है ना अपने माँ बाप को, और खाविंद ने तो उनकी अच्छी बुरी तालीम उनको नहीं दी ना, राइट। तो अब उसका क्या कसूर है अगर उसके अम्मा अब्बा जो है वो उल्टी हरकतें कर रहे हैं? उनकी अपनी जहालत है, या उनके जो अम्मा अब्बा थे उनकी जहालत थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी औलाद को सही इंसान नहीं बनाया, राइट। ये खाविंद का कसूर है इसके अंदर, लेकिन अकल कहाँ काम करती है, तो बेअकली की बातें करना शुरू कर देती है, कंपैरिजन शुरू कर दिया, और ये जो है वो इस तरह से ताने देने शुरू कर दिए। आपके साथ कोई ऐसा करे ना, जो कि करते हैं कितने घरानों के अंदर, शौहर जो होते हैं वो बीवी को इस तरह के ताने दे रहे होते हैं,
तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारा बाप ऐसा है, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारा बाप ऐसा है, कितने तमाशे उन वहां पे। वो बीवी जो होती है वो थोड़ी सी कमजोर होती है या जरा ज्यादा शरीफ होती है तो वो सुन रही होती है, जहां पे खाविंद जो है ज्यादा शरीफ होता है वहां पे खाविंद को ये बातें सुननी पड़ती हैं। वो भी जाहिल, ये भी जाहिल, इधर भी गलत हो रहा है उधर भी गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से जो है ना वो आप बहुत बहुत बुरा काम कर रही होती है। अब जो है वो जो औरत ये कर रही होती है तो अक्सर जो कमजोर खा, पहली बात तो कि अगर वो कमजोर नहीं होता ना तो एक लगाता, एक लगाता आपकी, ठीक है, अगर वो कमजोर नहीं होता। ये तेरी मजाल कैसे हुई कि मेरी माँ को ऐसा ऐसा कहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारे मेरे बाप को ऐसा कहे। अगर वो ताकतवर होता नफसियाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर तो किसी ना किसी दर्जे में होते ही ताकतवर, लेकिन अगर नफसियाती तौर पर वो ताकतवर होता, मैं रूहानी तौर पर नहीं कह रहा, क्योंकि जो रूहानी तौर पर ताकतवर होता है ना वो तो फिर भी नहीं मारेगा अपनी और अपनी बीवी को, यानी खुदा का खौफ रखने वाला वो तो ये हरकत नहीं करेगा, लेकिन खाली नफसियाती तौर पर ताकतवर इंसान, तो नफसियाती तौर पर ताकतवर तो वो शख्स होता है जो कि जरा गुस्से का तेज होता है और जो कि जरा जरा सेल्फ कॉन्फिडेंट किस्म का इंसान होता है, ठीक है ना। खुदा खौफी का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो अब वो जो है ना एक रख के लगाएगा अपनी बीवी को, तुमने कैसे जो है वो मेरी माँ के खिलाफ बात करी, तुमने कैसे मेरे बाप के खिलाफ बात करी, ठीक है। या ये कि दूसरी तरीके से आपको डांट फैला करके जो है वो चुप करा देगा, लेकिन जो आपकी सुन रहा है ना वो तो वो है जो कि नफसियाती तौर पे कमजोर है, किसी ना किसी वजह से वो नफसियाती तौर पे कमजोर है, इस वजह से वो आपकी सुन रहा है। और जब वो आपकी सुन रहा है तो हो सकता है कि आपके कहने के ऊपर वो अमल भी कर ले, ठीक है, कि आप जो है वो सास साहिबा को मदा चखाने के लिए अपने खाविंद को जो तैयार कर रही हैं, तो हो सकता है आपकी बात सुन करके अपनी अम्मी के साथ कुछ बदतमीजी भी कर जाए, राइट, अपने अब्बा को जो है वो कुछ उल्टी सीधी बात कह जाए। लेकिन ये बात याद रखें कि वो ये अमल तो कर लेगा लेकिन वो आपके साथ उसकी मोहब्बत नहीं बढ़ेगी, इसकी वजह से उसकी मोहब्बत में इजाफा नहीं होगा, इसकी वजह से वो काम बेशक कर ले आपकी मर्जी के मुताबिक, लेकिन फिर भी आपके लिए उसके दिल में नफरत या बेइज्जती जरूर पैदा होगी, ठीक है, क्योंकि उसने जो गलत काम किया है ना उसका जमीर उसको मलामत करेगा, इसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से उसको नुकसान उठाना पड़ेगा इस वजह, इस हरकत की वजह से जो उसने अपने माँ बाप की वजह से की है, आपके कहने के ऊपर, आपकी बातों के ऊपर, आपके कंपैरिजन के ऊपर। तो अब इसका नतीजा क्या होगा कि लाजमन वो आपके भी खिलाफ हो जाए, राइट, अपनी बीवी के भी खिलाफ हो जाए। बात समझ में आ रही है? सिर्फ आपकी बात पे अमल कर लेना ये आपकी कामयाबी नहीं हुई, बल्कि ये भी आपकी नाकामी ही है, ये भी नाकामी ही है, क्योंकि यू बेसिकली लॉस्ट योर हस्बैंड। तो अपनी मर्जी पूरी करवा लेने का मतलब ये कोई थोड़ी होता है कि आप कामयाब हो गए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना कि नेवर कंपेयर, तो ये खाविंद के सामने इस किस्म की कभी भी बात ना करे कोई, बल्कि इससे भी एक दर्जा आगे बढ़ करके खुद भी अपने जहन में भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि खाविंद को नहीं बोल रही है लेकिन खुद ही बैठ करके जो है ना वो सोची चली जा रही है, मेरी अम्मी तो ऐसी थी, मेरी सास ऐसी नहीं है, मेरे अब्बा तो ऐसे थे या ऐसे हैं, मेरे ससुर ऐसे क्यों नहीं है, राइट, खाविन तो सुनता नहीं है, अब बैठे हुए अपने जहन में सोच चली आ रही है। ये भी कोई कम बुरी चीज नहीं है, ये भी बहुत बुरी चीज है। भाई आप कैसे दो इंसानों का मुवाजना कर सकती हैं? ये कोई वो अंग्रेजी का मुहावरा है एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना, दो एप्पल्स जो थे ना वो बड़े बिल्कुल एक जैसे थे तो आपने दोनों दोनों एप्पल्स को आपस में कंपेयर किया, अच्छा ये तो बस बिल्कुल एक जैसे। भाई ये इंसानों की बात हो रही है, वैसे तो एप्पल्स भी तो एक जैसे नहीं होते, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक हर मखलूक को जो है वो मुख्तलिफ बनाया है ना, वो जो आपकी जो अंगूठा छाप तो फिंगर जो प्रिंट होता है तो वो हर दो इंसान का मुख्तलिफ होता है, करोड़ों अरबों इंसान भी होंगे तो फिंगरप्रिंटिंग जो होती है मुख्तलिफ होती है, रेटिना स्कैन, अब जो है वो अंगूठा भी नहीं लगवाते, अब जो है वो ऐसे ही गुजर जाए तो तेरा कैसे भी आइडेंटिफिकेशन करी इन्होंने, इन्होंने ना तस्वीर देखी ना इन्होंने जो है वो थंब स्कैन किया। अब कैसे आइडेंटिफिकेशन भाई, वो रेटिना स्कैन हो गया, आपकी आंखों को पढ़ लिया वहां पे जो कैमरा लगा हुआ था उसने, क्योंकि हर इंसान का रेटिना मुख्तलिफ है, उनके पास सारा डेटा सेव्ड है कि इसका रेटिना ऐसा होता है, इसका रेटिना ऐसा होता है, जो आंखों के जो होता है ना वो काला काला जो लग आंखों के अंदर होता है लेंस, तो उसके अंदर रेटिना होता है। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है, सिर्फ जिस्मानी साख्त में नहीं बल्कि नफसियाती तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी, हर लिहाज से अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को अलग बनाया है। तो अब आप कैसे कंपेयर कर सकती हैं अम्मा अब्बा को उसके अम्मा अब्बा के साथ? भाई वो अलग इंसान है, उनका माहौल अलग है, उनका जो है वो उठना बैठना अलग है, उनकी जो है वो तालीम और तरबियत अलग तरीके से हुई है, उनके हालात अलग हैं, तो कंपैरिजन की तो कोई तुक ही नहीं भाई। सास ससुर को तो रहने दें, इवन अपनी औलाद के अंदर कंपैरिजन करने की इजाजत नहीं है। पढ़ानी हमने तरबियत औलाद के अंदर ये वाला पॉइंट भी, कि अपने दो बेटों के दरमियान कंपेयर ना करें कि वो तो इतना अच्छा है ये इतना अच्छा क्यों नहीं है, वो तो ये काम ऐसे कर लेती है ये ऐसे काम क्यों नहीं करती है, अपनी औलाद में कंपैरिजन से मना किया, क्योंकि औलाद भी तो मुख्तलिफ है ना। हर एक का अपना अपना अल्लाह ताला ने इस्तेदाद दी है, अपना अपना जो है मामला है, हर एक को इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तवज्जो की जरूरत होती है। यही तो हमारे मशाइख का तरीका है, इंडिविजुअलिस्टिक तरबियत जिसको कहते हैं। तो औलाद को कंपेयर नहीं कर सकते, तो सास ससुर तो जो है वो तो एक लीगल ताल्लुक होता है, उनको कैसे कंपेयर कर रहे हो? ठीक है, उम्मीद है कि बात थोड़ी बहुत भी कम से कम समझ में आई होगी और आइंदा कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करेगा। ठीक है, और शौहर साहब आपके करते हैं तो शौहर साहब जो है ना उनको, उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। ठीक है, या ये क्लास की रिकॉर्डिंग उनको सुनाने की कोशिश कर लें, शायद उनके पास समझ में आ जाए। ठीक है जी, फिर उसके बाद चौथी बात जो है वो, नहीं तीसरी बात पढ़ लेते हैं, टाइम तो वैसे वो खत्म हो गया लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं, शायद इसमें टाइम लगे। तो तीसरी ये है कि अगर ससुराल वाले कुछ गिफ्ट दें तो ऑलवेज अप्रिशिएट इट इवन इफ यू डोंट लाइक इट। ठीक है, यानी अगर वो चीज आपको अच्छी ना भी लगे तो भी हमेशा उसकी तारीफ करें। उन्होंने गिफ्ट तो दिया है ना, इसलिए उनकी तारीफ करना जरूरी होता है। ठीक है, गिफ्ट अगर अच्छा नहीं लग रहा तो भाई गिफ्ट देना भी तो एक अच्छा काम है ना। और नबी अलैहिस्सलाम ने तो क्या फरमाया कि तोहफा दिया करो, हदिया दिया करो, चाहे वो किसी बकरी का खुर क्यों ना हो। बकरी का खुर क्यों फरमाया? क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप खा भी नहीं सकते। राइट, जो वो शूज लगे हुए होते हैं उनके पैर के नीचे, उसको आप खा भी नहीं सकते, ऐसी यानी गंदी चीज, जमीन की गंदगी भी उसके अंदर लगी हुई होती है और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने तोहफा दो, चाहे ऐसी चीज हो, क्यों? इसलिए कि तोहफा इट्सेल्फ इज नॉट इम्पोर्टेंट, तोहफा देने का फेल जो है ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जब वो तोहफा दे रहे हैं तो इसके ऊपर उनकी तारीफ करें। ठीक है, लड़कियां गलती ये करती हैं कि नंद ने कोई चीज ला कर दी या सास ने ला करके दी तो फिर उसके नकाइस नुक्स बयान करना शुरू कर देती हैं कि ये तो कम कीमत है, ये खूबसूरत नहीं है, ये तो फुला से मैच भी नहीं करती, क्योंकि इससे लाने वाले की मोटिवेशन जीरो हो जाती है। ठीक है, तो दो ही सूरतें हो सकती हैं ना तोहफा देने वाले की। एक सूरत ये हो सकती है कि उसने इखलास के साथ तोहफा ला के दिया है कि भाई मैं उनको खुश करूं अपना तोहफा दे करके, मैं उनकी मोहब्बतें बटोरूं तोहफा दे करके, तो इखलास के साथ दिया है। अब तोहफा वो अपनी कम अकली की वजह से या कम इल्मी की वजह से वो ऐसा नहीं खरीद सकी जो कि आपको पसंद आता, तो भाई तोहफा तो दिया ना कम से कम उन्होंने, तो इसके ऊपर उनकी तारीफ करो, क्यों जो है वो उसके नुक्स निकाल रही हो। जाहिर है तोहफे का ताल्लुक भी तो उनके जात के साथ है ना, क्योंकि उन्होंने खरीदा ना, तो अब आप तोहफे के ऊपर जब एतराज करेंगी तो गोया के आप उनके ऊपर एतराज कर रही हैं। बिल्कुल जिस तरीके से जब आप माँ बाप पे एतराज करती हैं तो, यानी सास ससुर पे एतराज करती हैं, तो असल में वो आप खाविंद पे एतराज कर रही होती हैं, क्योंकि वो उसके माँ बाप हैं। उसी तरह तोहफे पे एतराज करने का मतलब है तोहफा देने वाले पर एतराज करना। ठीक है ना, तो अगर उन्होंने मोटिवेशन के साथ तोहफा दिया था तो अब उनकी मोटिवेशन जीरो हो जाएगी। और दूसरी सूरत भी हो सकती है जो कि यकीनन फौरन से आता है, नहीं वो तो तोहफा देती ही मुझे सड़ाने के लिए, ठीक है। अब वो वाकई सड़ाने के लिए देती है कि नहीं देती है, लेकिन जब दिमाग में खन्नास भर जाता है, खन्नास का अमल भर जाता है, क्योंकि खन्नास नहीं भर सकता, खन्नास तो एक शैतान होता है, वो वसाविस भरता है दरअसल, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरि नास मिनल जिन्नति वन्नास, ठीक है। तो जब उसके वसाविस भर जाते हैं दिमाग के अंदर, तो किसी की अच्छी चीज अच्छी नहीं लग रही होती, बल्कि बुरा ही लगे, कोई ना कोई बुरी बात, उसने इस वजह से दिया होगा, उसने इस वजह से दिया होगा, ठीक है। तो भाई अगर उसने इस वजह से दिया भी, तो भी जो आप तनकीद करेंगे ना, तो उससे जो है वो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, सबर कर लें, खामोश रह जाएं उसके ऊपर, थोड़ी सी झूठे मुंह की तारीफ कर दें, गुमान अच्छा रखते हुए कि हो सकता है इस दफा उसने जो है वो अच्छे नीयत के साथ दिया हो, अच्छा गुमान करके जो है वो उसकी तारीफ कर दें, ठीक है। तो ये झूठ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अच्छा गुमान रखते हुए उसकी तारीफ करी है ना, तो ये झूठ भी नहीं होगा। तो झूठे मुंह तारीफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोलने की इजाजत मिल रही है शेख साहब की तरफ से, नहीं, बल्कि अच्छा गुमान बना लें और फिर तारीफ कर दें, अब ये झूठ नहीं होगा, क्योंकि आपने अच्छे गुमान की बुनियाद पर बात करी है। झूठ की तो किसी भी सूरत इजाजत नहीं होती है, और ये गुनाह से जो है वो ना वो नेक नहीं बन सकता, झूठ चाहे कोई ससुराल को बचाने के लिए झूठ बोला जाए, फिर भी ये नेक नहीं बनता। अच्छा, किसी ने लिखा कि अगर हस्बैंड कभी आपके गिफ्ट की तारीफ ना करें, ना ही उसको ओपन करके देखें, कैन वी डू सेम एज आई डिड सेम फर्स्ट टाइम एंड ही बिकेम सैड, क्या मैंने सही किया कि उन्होंने गलत किया तो मैंने भी वही गलत किया, तो फिर वो भाई क्या आपने सही किया, यानी अब अपने सवाल को थोड़ा सा देखें ना, आप सवाल क्या कर रहे हैं कि जब हस्बैंड ये काम करता है तो वो गलत करता है, ठीक है, फिर जब मैंने ये काम किया तो उसके ऊपर अब आप सवाल पूछिए कि मैंने सही किया, तो नहीं आपने सही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि बुराई का जवाब बुराई से देना जो है ना, ये सिर्फ मैदान जंग में होता है, ठीक है, कि जब वो आपके ऊपर तलवार चलाए तो आप उसका तलवार से जवाब दें, अच्छे बोल से जवाब ना दें, ठीक है ना। तो दुश्मन जब आपके ऊपर गोली चलाए ना, तो अब आप मीठे बोल बोल करके उसका जवाब मत दें, बल्कि आप भी उसके ऊपर गोला चलाएं, बल्कि गोली का जवाब गोले से दें, ठीक है, तीर का जवाब जो है वो पत्थर से दें, नेजे का जवाब जो है ना वो, लेकिन ये मैदान जंग में होता है, ठीक है। और मैदान जंग के उसूल, मैदान जंग आपका घर अल्लाह ना करे मैदान जंग बन जाए, या बनाने की कोशिश भी नहीं की जाएगा उसको मैदान जंग, ठीक है। तो ये जो आपने किया ना, ये मैदान जंग वाला काम किया जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा काम करें और अल्लाह ताला से दुआ करती रहें, अल्लाह ताला उसके दिल को बदलेंगे, उसको एहसास देंगे, और वो भी आपके साथ अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, अकल शरीफ उनके पास भी आ जाएगी। भाई लोग बदलते हैं ना, अपने आप को देख लें, आप क्या बचपन से जब से पैदा हुई थी आप जो है वो दीन की क्लासेस लेती थी, ठीक है, पहले आपका हो सकता है, मुझे नहीं पता आपकी बाकी तफसील, लेकिन हो सकता है आप दुनियादार होती थी, गलत काम करती थी, बेपर्दा रहती थी, और पता नहीं क्या क्या फिल्में देखती होंगी, गाने देखती होंगी, अब जो है वो आप आकर के माशाल्लाह कुरान की क्लास ले रही हैं, तजवीद की क्लास ले रही हैं, पर्दे की क्लास ले रही हैं, उमूर खानदारी की क्लास ले रही हैं, तो आप कैसे बदल गई भाई, खुद से बदल गई नहीं, आपको अल्लाह ने बदला है, ठीक है, अल्लाह ने तौफीक दी है, तो आपका तो अल्लाह है, आपके खाविंद का अल्लाह नहीं है, क्या ख्याल है, या अल्लाह का जोर आप पे चलता है, अल्लाह का जोर नाउज बिल्ला आपके खाविंद पे नहीं चलता, तो क्या इस किस्म के अल्लाह की आप इबादत करती हैं जिसका जोर एक पे चलता है दूसरे पे नहीं चलता, ऐसा नहीं है ना। तो हमारा काम है सही काम करना, अच्छा काम करना, फिर अल्लाह का इख्तियार है, और अल्लाह की हिकमत में जब वो चाहेंगे अगले बंदे को बदलेंगे, लेकिन जब हम किसी गलत काम की वजह से खुद गलत करना शुरू कर देते हैं, तो हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे होते सिवाय अपना नुकसान कर रहे। ये एक बहुत ही सादा सा उसूल है, लेकिन इसके अंदर हम गलतियां कर जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती भी जो है ना, जिस तरह पीछे बात हुई ना कि जब आप माँ बाप की को कंपेयर करते हैं, तो असल में ये जो है ना वो खाविंद की तरफ जा रहा होता है ये एतराज। उसी तरीके जब तोहफे पे एतराज कर रहे होते हैं तो असल में तोहफा देने वाले पे एतराज किया जा रहा होता है। उसी तरीके से जब हम अल्लाह के बंदों के बारे में इस तरह से सोचते हैं कि ये तो नहीं ठीक हो सकते, तो मुझे ही कुछ गलत काम करके इनको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हम एतराज अल्लाह पे कर रहे होते हैं कि अल्लाह इनको ठीक नहीं कर सकता, मुझे तो कर सकता था, मैं तो हो गई ठीक, इसको ठीक नहीं कर सकता, तो इस वजह से मुझे कोई टेढ़ा तरीका, जो कहते हैं ना बाय हुक और बाय क्रुक, सीधे तरीके से बात नहीं मान रहे थे तो मैं क्रुक तरीके से काम करूंगी फिर। तो ये जो हमारा एटीट्यूड है ना, ये किसकी तरफ जा रहा होता है, ये अल्लाह पर एतराज जा रहा होता है कि अल्लाह नहीं कर सकता, इस वजह से मुझे उल्टा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना वो हमारे यहाँ सड़कों का मामला खराब, फलाना मामला खराब, तो अब हुकूमत तो कुछ कर नहीं सकती, हुकूमत ने तो आकर एक काम ठीक करना नहीं है, तो लोगों को खुद ही काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वो चाहे जायज तरीके से ठीक काम करें ठीक, या जो है वो नाजायज तरीके से काम करें, क्योंकि हुकूमत तो कर नहीं सकती, हुकूमत तो कमजोर है। हमारा यही मामला अल्लाह के साथ भी है, ठीक है, कि अल्लाह तो कर नहीं सकता ना उस बिल्ला, तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। अब सीधे तरीके से काम होता है तो ठीक है, नहीं तो हम उल्टी तरीके से काम कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह ने तो करना नहीं है कुछ। ठीक है जी, बात समझ में आई, लता मेहरबानी फरमाए, और हमारे अहवाल को और हमारी सोचों को ऐत की तरफ माइल फरमाए। व आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।